ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। या पतिं हरिभावेन भजेता श्री इव तत्परा हर्यात्मना हरिर्लोके पत्या श्रीरिव मोदते। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की साध्वी स्त्री के लिए लक्ष्मी जी जैसी आज्ञाकारिता आदर्श होती है। ब्रह्म संहिता 5:29 में कहा गया है, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम। विष्णु भगवान वैकुंठ लोक में हजारों लक्ष्मियों द्वारा पूजित होते हैं और गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण हजारों गोपियों द्वारा पूजित होते हैं, जो सभी लक्ष्मी जी के ही समान हैं। स्त्री को लक्ष्मी जी के ही समान श्रद्धा पूर्वक अपने पति की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान का आदर्श दास होना चाहिए और स्त्री को लक्ष्मी के समान आदर्श पत्नी होना चाहिए। तब पति तथा पत्नी दोनों इतने श्रद्धा युक्त तथा प्रबल होंगे कि वे साथ साथ कर्म करते हुए भगवत धाम वापिस जा सकेंगे। इस संबंध में श्री मध्वाचार्य का मत है, हरिरस्मिन स्थित इति स्त्री नाम भर्तरी भावना, शिष्याणाम च गुरौ नित्यम शूद्राणाम भ्रमणादिषु, प्रत्यानाम स्वामिनी तथा हरि भाव उदारिता। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति को परमेश्वर की भांति माने, शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु को भगवान की तरह माने, शूद्र को चाहिए कि ब्राह्मण को भगवान के सदृश माने और सेवक को चाहिए कि अपने स्वामी को भगवान की भांति माने। इस प्रकार सभी स्वतः भगवत भक्त हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में इस प्रकार सोचने से वे सभी कृष्णा भावना भावित हो जाएंगे। ओम अज्ञानस्त मिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहकणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये, वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ये जो प्रसंग चल रहा है, शायद आप में से काफी भक्त लोग कुछ दिनों के बाद आए होंगे। नरसिंह भगवान जी के प्रसंग समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर महाराज जी की सभा में नारद मुनि उनको इस संदेश दे रहे हैं। आगे के सभी अध्यायों में कि एक पूर्ण समाज की कैसे स्थापना कर सकते हैं, परफेक्ट सोसाइटी। और परफेक्ट सोसाइटी के लिए नारद मुनि जी युधिष्ठिर महाराज को वर्णाश्रम के विषय में बता रहे हैं, और इस 11वें अध्याय में वो चार वर्णों की चर्चा कर रहे हैं, अगले अध्याय में चार आश्रमों की चर्चा करेंगे, उसके बाद एक आदर्श ग्रस्त जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबके सब अध्याय बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और हम सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इस बद अवस्था से हम मुक्त अवस्था में कैसे क्रमशः प्रगति कर सकते हैं। वर्णाश्रम का मुख्यतः अर्थ होता है एक ट्रेनिंग सिस्टम, प्रशिक्षण की विधि, जिसके द्वारा हम एक बद जीव धीरे धीरे क्रमशः अपनी बद अवस्था से प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठकर मुक्त अवस्था में आ सके। ये एक ट्रेनिंग सिस्टम है, प्रशिक्षण की एक विधि है। तो पिछले कुछ लोगों से एक ग्रस्त आश्रम में स्थित धर्म पत्नी का क्या कर्तव्य होता है ये बताया जा रहा है। तो जब ऐसे शास्त्रों में एक पत्नी के धर्म की चर्चा होती है तो प्रभु जी लोग ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। उनको मालूम होता है कि अब तो काफी अच्छा मसाला मिलने वाला है। अच्छा मसाला मिलेगा भी प्रभु जी लोगों को, लेकिन प्रभुपाद जी ने करुणा वश करके अपने तात्पर्य में बहुत बैलेंस किया हुआ है अपने अनुवाद में और तात्पर्य में। इससे पिछले श्लोक में भी एक पत्नी के धर्म की चर्चा करते हुए बताया गया, 28वें श्लोक में, साध्वी स्त्री को लालची नहीं होना चाहिए, अपितु उसे सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए, उसे गृहस्थी के कामकाज में अत्यंत पटु होना चाहिए और धार्मिक नियम में पूर्णतया अवगत होना चाहिए। कितने सर्वगुण संपन्न एकदम। उसे मधुर तथा सत्यभाषिणी होना चाहिए, उसे अत्यंत सतर्क तथा सदैव शुद्ध एवं पवित्र रहना चाहिए, है ना, कितने अच्छे से गुण है। इस प्रकार एक साध्वी स्त्री को उस पति की प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए जो पतित ना हो। तो स्त्री ये सारे के सारे गुण प्रदर्शित तब करेगी, कर पाएगी, जब पति भी पतित ना हो, है ना। तो आज के श्लोक में बताया गया है, या पति हरि भावेना भजेत श्रीव तत्परा हरियात्मने हरेर लोके पत्या श्रीव मोदते। पत्नी को लक्ष्मी के पद चिन्हों पर पूरी तरह चलकर पति की सेवा में लगी रहती है और निश्चित रूप से अपने भक्त को पति के साथ वो भगवत धाम जाती है। या पति हरि भावेना, पति की सेवा करनी चाहिए उसको भगवान समझते हुए, हरि के भाव से, जैसे लक्ष्मी जी श्री भगवान विष्णु की पूजा करती हैं। और इस ढंग से पूजा करेंगे तो पति और पत्नी दोनों भगवत धाम वापिस चले जाएंगे। तो पति को भी भक्त होना चाहिए प्रभुपाद कह रहे हैं, और पत्नी को उसका आदर्श सेवक होना चाहिए। जब ये कॉम्बिनेशन होगा, पति भी एक आदर्श भक्त होगा और पत्नी उसकी एक आदर्श सेविका होगी, बड़ा प्रभुपाद कह रहे हैं कि उनकी इतनी श्रद्धा इतनी प्रबल होगी कि दोनों ही निश्चित रूप से भगवत धाम वापिस जाएंगे। तो ये आइडियल कॉम्बिनेशन है। और इसके बाद मध्वाचार्य जी बहुत प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि एक पत्नी को पति को, एक शिष्य को गुरु को, एक सेवक को अपने स्वामी को, और एक शूद्र को ब्राह्मण को किस रूप में देखना चाहिए, भगवान के रूप में देखना चाहिए। और ऐसा देखने से वो धीरे धीरे भक्त बन जाएंगे या पूर्ण रूप से कृष्णा भाना भावित हो जाएंगे। तो यहां इस श्लोक के तात्पर्य में बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। देखिए, भगवान तो कण कण में विद्यमान है, और ये जो शुद्ध भक्त होते हैं, स्थावर जंगम जड़ चेतन हर चीज में वो अपने इष्ट देव की स्फूर्ति कर पाते हैं, हर जगह वो भगवान का अनुभव कर पाते हैं। देखिए, जैसे मैं अभी यहाँ व्यास आसन पे बैठा हूं या इस पृथ्वी पे आप बैठे हैं, तो हम देखे जाए तो इसमें भगवान की अनुभूति कैसे कर सकते हैं। इस व्यास आसन पे मैं बैठा हूं तो इसके अंदर एक धारण करने की शक्ति है, या आप पृथ्वी पे बैठे हैं तो पृथ्वी के अंदर एक धारण करने की शक्ति है। तो पृथ्वी के अंदर धारण करने की शक्ति कहां से आई, भगवान से, क्योंकि अनंत शेष जी ने अपने अनंत शीशों पर कितने ही अनंत ब्रह्मांडों को धारण किया हुआ है। इस कमरे में ये पिलर्स हैं, इन्होंने छत को धारण किया हुआ है। तो इस शक्ति कहां से मिल रही है, अनंत शेष जी से, ये उसका प्रतिसूचक है। हमें भगवान का स्मरण होता है कि ये धारण करने की शक्ति अंततः भगवान से ही आई है। इस सृष्टि में किसी भी वस्तु का अगर कुछ अस्तित्व है, वो कुछ समय तक रहती है, तो इसका मतलब वो भगवान की शक्ति है। कहीं भी हमें जीवन का कुछ लक्षण दिखाई देता है तो हमें भगवान का उसे स्मरण कराती है। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, उसके स्रोत जो अंततः कौन है, भगवान है। लेकिन ये जो दृष्टि है ये हर किसी की नहीं आ सकती, इसके लिए बहुत प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और ये ब्रह्मबोध की अवस्था पे आती है, ज्ञान की अवस्था पे जब हम हर वस्तु को भगवान से संबंधित देख पाते हैं, साधारणतः ये संभव नहीं है। लेकिन जो मध्वाचार्य जी श्लोक बता रहे हैं कि पत्नी को पति को और शिष्य को गुरु को, सेवक को स्वामी को और शूद्र को ब्राह्मण को भगवान के रूप में देखना चाहिए, ये एक बड़ा सामाजिक दृष्टिकोण है। यहां से हम शुरुआत कर सकते हैं और फिर हम देखेंगे, आज हम चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। विशेषकर एक शिष्य को गुरु को हरि के रूप में देखना चाहिए। ये इतना महत्वपूर्ण ये कंसेप्ट है जिसकी ये सही अंडरस्टैंडिंग से हमारा आध्यात्मिक जीवन बहुत सरल हो जाएगा और जिसकी गलत अंडरस्टैंडिंग से हमारे आध्यात्मिक जीवन तहस नहस हो सकता है। इसी संस्था में इतिहास में पीछे और अभी बहुत से लोग इसमें बारे में कंफ्यूज रहते हैं। रोज सुबह हम गाते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेन, लेकिन काफी भक्त लोग चर्चा करते हैं तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। और पहले बहुत से भक्त अपने गुरु का आश्रय छोड़ के जा चुके हैं क्योंकि वो देखते हैं यहां तो लिखा गया साक्षात हरित्वेन, गुरु को साक्षात हरि के समान होना चाहिए, यानी कि उसको बिल्कुल नित्य सिद्ध होना चाहिए। लेकिन हम तो वरिष्ठ भक्तों को या गुरु को नित्य सिद्ध के रूप में नहीं देख रहे, तो ये तो केवल किताबी बातें हैं साक्षात हरित्वेन, तो क्या करें। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और भक्ति के मार्ग से च्युत हो जाते हैं। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे हम गुरु को साक्षात हरि के रूप में देख सके। हम देखते हैं कि भगवान तो एक पापी से पापी जीव के, बहुत ही जो निकृष्ट व्यक्ति है उसके उधर में भी भगवान जठराग्नि के रूप में रहते हैं। भगवान कहते हैं मैं श्वान रो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, इसमें ये तो नहीं बोलते जो अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं उन्हीं के पेट में खाना पचाता हूं, जो पापी लोगों में खाना नहीं पचाता, ऐसा तो नहीं लिखा ना। और भगवान कहते हैं कि सबको बुद्धि मैं देता हूं, कोई साइंटिस्ट है कोई अगर टेररिस्ट है उसको भी बुद्धि भगवान ही देते हैं। और भगवान जो इतनी प्राणवायु है जिसके कारण हमारे शरीर चलते हैं, अंग चल रहे हैं, सबके अंदर भगवान की उपस्थिति है। तो भगवान की उपस्थिति तो हर जीव में है और हर जीव में भगवान की उपस्थिति को देख सकते हैं। तो फिर क्या है, एक भक्त के अंदर भगवान की उपस्थिति को नहीं देख सकते। भगवान तो हम इतना मान रहे हैं कि भगवान ही पेट में रह के हमारा खाना पचा रहे हैं, हमें बुद्धि दे रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं, सब कुछ भगवान की शक्ति से है। तो क्या भगवान एक भक्त के अंदर अपनी शक्ति को संचारित नहीं कर सकते? निश्चित रूप से कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोगों के अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि साक्षात हरि का क्या मतलब है और वो हमारे मत से मैच नहीं करता, तो बोलते नहीं नहीं अगर मुझे ये व्यक्ति इसके अंदर भगवान के गुण नजर नहीं आ रहे हैं तो ये साक्षात हरि के समान नहीं हो सकता, तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमें वो सूट नहीं कर रहा, हमारे ओपिनियन से वो मैच नहीं कर रहा, हमारे विचारधारा से वो मैच नहीं करता, तो हम अगर कहते हैं रिजेक्टेड। लेकिन ये बहुत खतरनाक है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम इस दृष्टिकोण को विकसित कर सकते हैं और इस दृष्टिकोण को अगर विकसित नहीं किया तो क्या क्या नुकसान है। आप क्या समझते हैं, अगर हमने सही ढंग से गुरु की स्थिति को नहीं समझा, उनको साक्षात हरि के समान नहीं देखा, तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में क्या खतरा आ सकता है? क्या खतरा आ सकता है? ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और गुड सबसे बड़ी बात है कि हमारी श्रद्धा पे बहुत बड़ा आघात पहुंचता है। और दूसरा, हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि अपने स्पिरिचुअल अथॉरिटी के साथ कैसे मिलकर सेवा करें, स्पिरिचुअल अथॉरिटी से कैसे डील करें, ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। कुछ वर्षों के बाद भक्तों की बहुत बड़ी चुनौती रहती है कि जो हमारी स्पिरिचुअल अथॉरिटी है उससे हम कैसे मिलकर उसके साथ सेवा करें, कैसे उनके साथ डीलिंग करें, क्योंकि उनके अंदर में अवगुण भी दिखाई देते हैं और गुण भी दिखाई देते हैं, तो कैसे उनसे डील किया जाए। तो ये अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो हमको इस तरह से फंक्शन करने में बहुत आसानी होगी। देखिए, आध्यात्मिक जीवन का जो आधार है श्रद्धा है। अगर हमारी श्रद्धा ही ढीली ढाली है, शेकी है, तो हमारा जब भी हमारा श्रवण, हमारा कीर्तन सब कुछ ढीला ढाला होगा। और कमजोर श्रद्धा के साथ कितना भी समय हम भक्ति में बिता दें हमें भक्ति का प्रभाव नजर नहीं आएगा, तो श्रद्धा ही कमजोर है। ये जो श्रद्धा है, ये जो आस्था कमजोर है, जब थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है तो हमें इच्छा करती है कि हम भक्तों का संग करें, और भक्तों के संग में ये श्रद्धा और पक्की हो जाती है तो हमारी इच्छा करती है कि जैसे ये साधु लोग कार्य करते हैं वैसे मैं करूं। उसको बोलते हैं भजन क्रिया। और जब भजन क्रिया साधुओं के जैसे कार्य करना हम शुरू करते हैं और श्रद्धा पक्की होती है तो क्या अच्छा होती है कि अब जैसे मुझे अपनी चेतना को भी इसमें लगाना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, बुरे कार्यों से बचना चाहिए, यानी कि अनर्थ निवृत्ति। और जब श्रद्धा और पक्की हो जाती है, अनर्थों से छुटकारा मिलता है, तो क्या बन जाती है? निष्ठा। उसके बाद जब श्रद्धा और प्रगाढ़ हो जाएगी तो हमें मालूम चलेगा हरि नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, हरि नाम में हमारी रुचि और बढ़ेगी, वो कहलाती स्टेज रुचि। और जब श्रद्धा आगे बढ़ेगी तो हमें भगवान के नाम से, भगवान के भक्तों से क्या हो जाएगी? आसक्ति। और जब श्रद्धा आगे बढ़ेगी तो प्रेम का फूल प्रतिफलित होगा और वो क्या कहलाएगा? भाव। और फिर अंत में श्रद्धा जब पूर्ण रूप से प्रगाढ़ हो जाएगी तो क्या कहलाएगी? प्रेम। तो ये सब जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी के। तो पूरा श्रद्धा का ये सफर है, लेकिन हमारी श्रद्धा ही सफर कर रही है तो ये सफर बहुत ही और सफरिंग देगा। तो इस श्रद्धा को बचा के रखना बहुत आवश्यक है। और साथ में अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो हम कैसे, जिन वरिष्ठ भक्तों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिस गुरु से हमने दीक्षा प्राप्त की है, उनके साथ कैसे डील करें, ये भी हमें मालूम नहीं चलता उनको किस दृष्टिकोण से देखें। तो अगर हम हर कण कण में भगवान की उपस्थिति नहीं देख पा रहे हैं, भक्तों के अंदर भगवान के गुणों को नहीं देख पा रहे हैं, तो कैसे शुरुआत करें? तो मध्वाचार्य जी बता रहे हैं कि कम से कम सामाजिक स्तर पे इसको शुरू करें। सामाजिक स्तर पे क्या बोला जा रहा है कि एक पत्नी को, पति को भगवान के रूप में देखना चाहिए, एक शिष्य को गुरु के रूप को भगवान के रूप में देखना चाहिए, एक सेवक को स्वामी को, एक शूद्र को ब्राह्मण को। ऐसा शुरू करने से प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वो भक्त बन जाएंगे। तो कैसे? देखिए, पत्नी और पति का केस लेते हैं। पहले पत्नी को, पति को भगवान के रूप में देखना चाहिए। पति क्या करता है पत्नी को? पति का अर्थ क्या होता है? जो पालन करे, पत्नी को सुरक्षा प्रदान करता है, उसका देखभाल करता है, उसको निर्देश देता है, और क्या है, उसको प्रोटेक्शन, उसको सुरक्षा प्रदान करता है, उसके साथ रहता है सुख दुख में। तो वास्तव में देखा जाए तो ये सारे भगवान के ही कार्य हैं। भगवान को जगतपति बोला गया है, भगवान ही पालन करता है, भगवान ही सुरक्षा प्रदान करते हैं, भगवान ही सबके हृदय में सुख दुख में हमारे हृदय में साथ में रहते हैं। तो वास्तव में जो पत्नी को सुरक्षा, शरण, आश्रय प्राप्त हो रहा है, भगवान के द्वारा ही पति के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। पति एक उनकी एक एजेंट है बीच में, भगवान की ही कृपा पति के माध्यम से उसको प्राप्त हो रही है। वैसे भी देखा जाए तो जब विवाह होता है तो विवाह दो आत्माओं का नहीं होता, वो अलग बात है कि गानों में बताया जाता है कि दो आत्मा मिल रही है। आत्मा का साइज कितना होता है? बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा। अब वो क्या वरमाला डालेगा बाल के अग्र? इतनी छोटी माला भी कहां से लाएंगे? और वो कोई घोड़ी में बैठेगा भी तो पता ही नहीं चलेगा बाल का अग्र का 10 भाग कहां है। तो ये तो आत्मा तो कहीं, आत्मा का तो विवाह होता नहीं। विवाह किसका होता है? सूक्ष्म और स्थूल शरीर दो आपस में मिल रहे हैं। सूक्ष्म शरीर के साथ उसकी मानसिकता, उसकी कंडीशनिंग, उसकी बदवस्था, और दो स्थूल शरीर, इसका विवाह हो रहा है। दो स्थूल शरीर, दो मानसिकताओं का विवाह हो रहा है। और ये स्थूल शरीर और ये मानसिकता क्या है? भूमि आपो अनल वायु खम मना बुद्धि यही वचा। ये तो भगवान की प्रकृति है। तो वैसे ही देखा जाए तो भगवान की शक्ति ही तो पालन कर रही है। जो पति है, जिसको हम पति बोल रहे हैं, वो क्या है? भूमि आपो अनल वायु खम मना बुद्धि यही वचा। ये तो भगवान की भिन्न प्रकृति, एक्सटर्नल पोटेंसी है। तो भगवान की शक्ति ही पालन कर रही है, रक्षा प्रदान कर रही है, सुरक्षा प्रदान कर रही है, आश्रय दे रही है। तो भगवान की शक्ति ही तो है। तो इससे निश्चित रूप से भगवान की शक्ति है, तो उसको हम भगवान के रूप में देखना चाहिए। क्योंकि भगवान जो कार्य कर रहे हैं वो एक पति को माध्यम बना के पत्नी को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, इस ढंग से पत्नी को पति को एक भगवान के रूप में देखते हुए उसकी सेवा करनी चाहिए। क्लियर है माता जी लोग? ठीक है ना। अब है कि शिष्य को गुरु को देखना चाहिए हरि के समान। तो गुरु का क्या कर्तव्य है? गुरु ऐसा कौन सा कार्य करे जो भगवान का कार्य कर रहे हैं? इसी अध्याय के सातवें श्लोक में बताया जा रहा है, परम पुरुष अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त वैदिक ज्ञान के सार, समस्त धर्मों के मूल तथा महापुरुषों की स्मृति है। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं कि सर्ववेदमयो हरि, कि सभी ज्ञान वेदों का जो सार है वो भगवान है। तो भगवान हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं और वो प्रत्येक जीव का मार्गदर्शन करते रहते हैं, उसको बताते हैं ये गलत है ये ठीक है। लेकिन हम अपने बद अवस्था के कारण, प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव के कारण हम परमात्मा की आवाज को नहीं सुनते। लेकिन भगवान तो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। लेकिन जब कोई जीव बहुत गंभीर हो जाता है आध्यात्मिक विषयों को लेकर, तो यही परमात्मा हमारे सामने गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, भक्त के रूप में प्रकट होते हैं और हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। तो गुरु या भक्त भगवान की क्या कार्य कर रहे हैं? हमें ज्ञान प्रदान करने का। जो ज्ञान हमें परमात्मा प्रदान करते हैं, जिसको हम सुन नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, वही ज्ञान बाहर से गुरु और भक्त हमें प्रदान करते हैं। इसलिए जो भगवान का ये कार्य है ये भक्तों के माध्यम से होता है। ठीक है ना। हम सब इस भक्ति में जुड़े हैं, भक्तों के माध्यम से जुड़े हैं। हमारे गांव किसी ने, राधिका रमन जी स्वयं भी आए थे हमें भक्त बनाने के लिए। भक्तों के माध्यम से हमें भगवान के विषय में ज्ञान मिला और हम भक्ति के इस प्रोसेस में जुड़े हैं। तो इस ढंग से हमें भगवान के प्रतिनिधि, गुरु को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया कि जो अर्च विग्रह को पत्थर माने और गुरु को साधारण व्यक्ति माने, उसको नारकीय बुद्धि, उसकी बुद्धि कहा गई है नारकीय बुद्धि है। इसी ढंग से भागवतम के 11 स्कंद में बताए हैं, भगवान बुद्ध को बताते हैं, आचार्य माम विजानीयम, आचार्य को मेरे समान ही मानना चाहिए। ना करहिचित अवमन्यत, कभी भी उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ना मात्य बुद्धि असूयेत, कभी भी उसको भौतिक बुद्धि के कारण, बच्चों को कोई छोड़ा, भौतिक बुद्धि के कारण उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। सर्वदेवमयो गुरु, जितने भी देवतागण हैं उनका जो प्रतिनिधित्व है वो गुरु के माध्यम से है। तो इसलिए आचार्य को, भगवान कह रहे हैं आचार्य को मेरे समान ही मानना चाहिए। आचार्य कौन है? जो कि वैदिक सिद्धांतों की स्थापना करते हैं, हमें उनका ज्ञान देते हैं, अपने जीवन में उसको उतार कर दिखाते हैं और अपने शिष्यों को भी शिक्षा देते हैं कि वैदिक सिद्धांतों के अनुसार जिए। ऐसे आचार्य को मेरे समान ही मानना चाहिए, उनसे हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अगर हम उनको साधारण व्यक्ति मानते हैं तो ये नारकीय बुद्धि है। नारकीय बुद्धि भगवद गीता के 16वें अध्याय में बताया गया है, ये असुरों का गुण है, देवताओं का गुण नहीं है, असुरों का गुण है। तो इस असुरों के गुण के साथ, नारकीय बुद्धि के साथ अगर हम भक्तों का संग करेंगे तो हमें कुछ भी मालूम नहीं चलेगा। तो इसलिए भक्तों को, जब हम भक्त लोग हमें ज्ञान प्रदान करते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि यह भगवान की विशेष शक्ति है। भगवान का मुख्य कार्य हमें ज्ञान देना, तो भगवान ये ज्ञान हमें भक्तों के माध्यम से दे रहे हैं। अब होता क्या है, शुरू शुरू में तो हम भक्तों, भक्त लोग जो हमें एक प्रचारक हमसे मिलते हैं, हम उनसे आकर्षित हो जाते हैं और हम उनसे जुड़ते हैं। लेकिन जब उनका हम संग करना शुरू करते हैं तो हमें उन्हें कुछ अवगुण भी दिखाई देते हैं। जब उनके अंदर अवगुण दिखाई देते हैं तो हमारी श्रद्धा कमजोर हो जाती है, फिर हम उनको साधारण मनुष्य मानना शुरू करते हैं। जहां उनको हम साधारण मनुष्य मानना शुरू करते हैं वहां हमारी नारकीय बुद्धि विकसित हो जाती है और फिर ज्ञान प्राप्त करने का पूरा प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है। हम देखेंगे जब हम शुरू शुरू में आते हैं हमारा श्रवण बड़ा तीव्र होता है, हम जो सुनते हैं उसको अपने जीवन में उतारते हैं, क्योंकि हमारी भक्तों में श्रद्धा बहुत अच्छी होती है। लेकिन जैसे ही हम उनके साथ संग करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमें उनको अवगुण दिखाई देते हैं, तो हमारा जो श्रवण है, क्योंकि श्रवण ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, ये हृदय से हृदय में स्थानांतरण होता है। क्योंकि हमारी श्रद्धा कमजोर हो जाती है, हमें उनके अंदर अवगुण ज्यादा दिखाई देते हैं और गुण कम दिखाई देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, कि जो ज्ञान हृदय में प्रवेश नहीं करता और वहां पे हमारी प्रगति रुक जाती है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि सीखना कि भक्तों के साथ संग कैसे किया जाए। निश्चित रूप से जिस प्रचारक ने हमें प्रचार करके अपने साथ जोड़ा उसके अंदर अवगुण भी होते ही हैं, ऐसा नहीं कि वो सर्वगुण संपन्न है, लेकिन अगर हम ये उम्मीद करते रहे कि नहीं जब तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो शत प्रतिशत शुद्ध हो, बिल्कुल नित्य सिद्ध के समान हो, उसी को मैं साक्षात हरि के रूप में देखूंगा, तो हमारा इस भौतिक जगत से छुटकारा नहीं हो सकता। अगर हम इस प्रतीक्षा में हैं, ऐसा हो नहीं सकता। हम इसे जितने भक्त यहां पर बैठे हैं अधिकांशता वो लीडर का रोल भी प्ले कर रहे हैं और फॉलोअर का रोल भी प्ले कर रहे हैं। अब हो सकता है कुछ लोग, हर कोई पति तो होगा ही या पति बनने वाला होगा, इतना लीडरशिप तो है ही है ना। और हो सकता है इस कौन संस्था में भी कोई लीडर का रोल प्ले कर रहा हो, अधिकांशता हमें से लोग कर रहे हैं, कोई ना कोई सेवा के हम इंचार्ज बनते हैं और फॉलोअर भी हैं। तो इस श्लोक को समझना बहुत जरूरी है पूरी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि हम लोग आपस में मिलते हैं, हम सब अभी प्रकृति के तीन गुणों में, क्षमा करें बहुत कम होगा कोई नित्य सिद्ध हो यहाँ पे, बट साधारणतया हम सब प्रकृति के तीन गुणों के अंदर ही हैं और हम सब ने मिलकर ही इन गुणों से बाहर निकलना है। तो एक इकट्ठे मिलकर संघर्ष करना है, एक दूसरे के साथ संघर्ष नहीं करना। तो कैसे हम भक्तों का संग करें बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भक्तों का संग करना नहीं सीखेंगे और उनके प्रति अपराध करना शुरू कर देंगे तो अपराध करने से क्या होता है कि सारा का सारा भक्ति का प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है एकदम और हम आगे नहीं बढ़ पाते और वहीं से हमारी दुर्गति होनी शुरू हो जाती है। और क्योंकि हम भक्तों को सही ढंग से देख नहीं पा रहे तो हम उनके ना चाहते हुए निंदा हो जाती है, हम उनकी निंदा करते हैं। इसलिए साधु निंदा को सबसे पहला अपराध बताया गया है हरिनाम के जप में, और यहां से ही सारे अपराध शुरू होते हैं, यहां से सारे अपराध और आगे शुरू होते हैं। इसलिए बहुत सावधान कैसे भक्तों का संग करना है। हमारी बात तो छोड़ो, श्रील प्रभुपाद जी को भी लोग नहीं समझ पाए जब प्रभुपाद जी इस धराधाम पे थे, बहुत कम भक्त उनकी असली वास्तविक स्थिति को समझ पाए और कितने ही भक्त लोग प्रभुपाद को छोड़कर चले गए, प्रभुपाद की स्थिति को नहीं समझ पाए, उनको लगा प्रभुपाद जी भी एक साधारण व्यक्ति हैं, उनको छोड़ दिया तो हमारी क्या स्थिति है। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इस बात को समझना है कि ठीक है उस भक्त में अवगुण भी है और गुण भी है। एक कर्मी व्यक्ति तो उसके अंदर ऐसे भक्त को के अंदर कोई गुण देखेगा ही नहीं, लेकिन अगर हम उसमें कुछ भी गुण देख पाए तो इन गुणों को हमें यह देखना चाहिए कि ये भगवान के गुण इस भक्त के माध्यम से प्रकाशित हो रहे हैं और भगवान मुझ पर कृपा करना चाहते हैं इस भक्त के माध्यम से, तो मुझे इस भक्त को पूर्ण रूप से आदर देना है, वैसे ही आदर देना है जैसे कि भगवान को आदर देना है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अंधाधुंध उनको फॉलो करें, उनके अंदर अवगुण भी हैं, लेकिन उस अवगुणों को हमें जब तक हम उनकी अनावश्यक निंदा ना करें और जिस गुणों के माध्यम से हमारा उद्धार हो रहा है, हमें कृपा प्राप्त हो रही है, हम उसको प्राप्त करते रहे। इस विधि को हमें समझने का प्रयास करना है, ये हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। सतर्क नहीं रहे क्योंकि जब कृष्ण स्वयं इस धराधाम में थे, प्रभुपाद कहते हैं मुश्किल से 100 या 200 व्यक्ति उनको भगवान के रूप में जान पाए, कृष्ण स्वयं को, जबकि ये जागृत ब्राह्मण थे जो कि पूर्ण रूप से वैदिक अनुष्ठानों में पारंगत थे, वो कृष्ण बलराम को नहीं पहचान पाए। तो हम लोग तो ऐसी बैकग्राउंड से हैं, अनकल्चर्ड बैकग्राउंड है, हम लोगों ने कोई संस्कार नहीं किए, तो हम भक्तों को कैसे पहचान पाएंगे। भक्तों को जानने के लिए भी, भक्तों के गुणों को भी अप्रिशिएट करने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी हम भक्तों के साथ भी होंगे उनको पहचान नहीं पाएंगे। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए, अगर हम भगवान की कृपा के प्रति हम कृतज्ञ रहेंगे, भक्तों के प्रति कृतज्ञ रहेंगे तो हम उनके गुणों को पहचान पाएंगे, अन्यथा भक्तों के साथ रहते हुए भी उनके गुणों को पहचान नहीं पाएंगे और फिर संघ का क्या लाभ होगा, संघ का कोई लाभ होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये प्रतीक्षा करते रहना कि एकदम शुद्ध भक्त होंगे, शत प्रतिशत सर्वगुण संपन्न होंगे, इनमें कोई लेश मात्र भी अवगुण नहीं होगा, तब मैं इसको गुरु के रूप में देखूंगा या साक्षात हरि के रूप में देखूंगा। वेट ही करते रह जाएंगे, इसी संसार में पड़े रह जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा संभव नहीं है, बहुत कठिन है। तो हमें अपने इस कम्युनिटी में कैसे आगे बढ़ना है ये देखना है, क्योंकि अब कुछ लोग हमें देख रहे हैं कि हमें आप मार्गदर्शन प्रदान कीजिए, कई लोगों को हम मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, तो आगे आके अभी और चर्चा करेंगे क्या क्या हम जिम्मेवारियां ले सकते हैं इसमें। तो जैसे कि एक राजा है अपने दूसरे देश में, या कोई प्रेसिडेंट है अब किसी दूसरे देश में अपने राजदूत को भेजता है, तो उस राजदूत को हमें क्या स्टेटस देना चाहिए, राजा का स्टेटस देना चाहिए। मैं बोलूं अमेरिका से एम्बेसडर आया और इंडियन एम्बेसडर बोले, अरे मैं जानता हूं यार, मेरे साथ का ही था ये, हम इकट्ठे ही थे एक बार, ना कुछ नहीं ऐसे है, ऐसे उसको बड़ा कैजुअल डील करना शुरू कर दूं, तो क्या अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है वो खुश होंगे? नहीं। जब हम उस एम्बेसडर को, राजदूत को वही स्टेटस देंगे जो कि प्रेसिडेंट को देते हैं, तभी प्रेसिडेंट प्रसन्न होगा। इसी ढंग से अगर कोई भक्त भगवान का संदेश हमारे तक पहुंचा रहे हैं, वो भगवान के दूत हैं, अगर उनको हम भगवान की तरह ही आदर नहीं करेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। हर एक जीव के अंदर भगवान अपनी शक्ति का आवेश डालते हैं, चाहे वो आवेश 1% हो या 50% हो या 90% हो, हमें उस आवेश को देखना है। हमें से कितने भक्तों को शिला प्रभुपाद जी ने प्रचार किया है यहां पे कोई, कि प्रभुपाद जी ने हमें आके भगवत दर्शन मैगजीन दी हो या भगवत गीता दी हो तब हम भक्त बने हो? हाँ, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका चरित्र बिल्कुल एकदम शास्त्रों के अनुसार है, ठीक है हम भक्त बनेंगे, नहीं। साधारण साधारण से भक्त जिनको हो सकता है कई बार इस संस्था में जुड़े 2 महीने हुए हो, एक हफ्ता ही हुए हो, शिशु में जुड़े हुए, चलो फूड डिस्ट्रीब्यूशन को नए भक्त को दे दिया, उसने किताब दी और उसने भक्त बना दिया, क्यों? उसके अंदर कोई अपनी शक्ति नहीं है, शक्ति का संचार है। जब हम भक्तों को नहीं पहचानते, इसका मतलब हम भगवान के गुणों को नहीं पहचान रहे हैं। भक्तों की प्रशंसा करना मतलब भगवान के गुणों की प्रशंसा करना, भगवान का गुणगान करना, और ये हमें बहुत सुंदर अवसर देता है कि हम भगवान का स्मरण कर सके। तो ये आवेश है, किसी भी जीव के अंदर भगवान इस आवेश संचारित कर सकते हैं, उसके अंदर शक्ति दे सकते हैं कि वो भगवान के मिशन में सहयोग दे। भगवान का क्या मिशन है? बद जीवों का उद्धार करना, बद जीव जो अज्ञानता में पड़े हैं उनको ज्ञान देना और अपने पास लेके आना। कोई भी इस मिशन में भगवान की सहायता करेगा वो भगवान के समान उसको देखना पड़ेगा, वो भगवान का राजदूत है, वो भगवान का दूत है, उसको उसी समान उसको आदर देना होगा, तभी ये प्रोसेस काम करेगा। कल हम श्रीला प्रभुपाद जी का लेक्चर देख रहे थे, वीडियो लेक्चर, तो उसमें एक रिपोर्टर ने प्रश्न पूछा, प्रभुपाद आप तो बहुत ही महंगी कार में आए हो और आपके डिसाइपल आपको बोलते हैं कि आपको भगवान के समान देखना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं बिल्कुल, इनको सिखाने के लिए ऐसे करना ही चाहिए, ये कार तो लोहे की थी, सोने की कार आनी चाहिए, क्योंकि भगवान को, अगर भगवान आपके घर में आए तो कौन सी कार लाओगे आप? चीज चुप हो गई। उसने दूसरा प्रश्न पूछा, प्रभुपाद आपके शिष्य ने बोला कल जो फंक्शन हुआ उसमें दूसरे ग्रहों से भी लोग आए थे और आप उनको देख पाए थे, क्या ये संभव है? प्रभुपाद बिल्कुल मैंने देखा। और प्रभुपाद बोला कि आप भी देख सकते हो लेकिन आपके अंदर दृष्टि नहीं है क्योंकि आप द्वेष करते हो, आपको तो इसी में ऑब्जेक्शन है, मैं इतनी महंगी गाड़ी में क्यों आया? तो आपके अंदर वो दृष्टि कैसे विकसित होगी? तो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है, जब हम द्वेष करेंगे भक्तों के साथ ज्ञान बंद हो जाता है। एम्पावरमेंट, ये पूरा भक्ति का प्रोसेस एम्पावरमेंट का प्रोसेस है, और जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करें उनसे हम द्वेष करें, उनपे शक करें, ठक ब्लॉक, ज्ञान इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं होगा, हृदय नहीं बदलेगा। तभी तो भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, वही गाड़ी अटकी हुई है, अटक जाती है गाड़ी, शुरू में बहुत बढ़िया स्पीड पकड़ती है, उसके बाद ठक अटक गई और बैक गियर में चलना शुरू हो जाती है। तो ये एक भक्ति का साइंस बहुत सटल है, बहुत ही सूक्ष्म है, इसमें ना तो हमें ब्लाइंड फॉलोइंग करनी है और ना ही द्वेष करना है। तो डिस्क्रिमिनेशन, विवेक बुद्धि का उपयोग करते हुए बहुत सतर्कता से और बहुत कॉशियसली और बहुत कॉन्शियसली, सचेत होकर और सावधानी से हमें आगे बढ़ना चाहिए और इसी ढंग से भक्तों का संग करना चाहिए। तो हर के अंदर एक आवेश संचारित हो सकता है, और हम देखते हैं कि भगवान के कितने कितने अवतार हुए, जैसे कि वेद व्यास जी है। वेद व्यास जी ने भी भगवान की एक एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को, एस्पेक्ट को क्या बोलेंगे, एक पहलू को प्रदर्शित किया। क्या पहलू उनका, एक वो बोलेंगे लिटरली इंकार्नेशन, साहित्यिक अवतार। उनके अंदर कृष्ण के सारे गुण नहीं है, तो एक शक्ति विशेष अवतार है, एक जीव के अंदर शक्ति का संचार किया जिससे कि वो सारे के साहित्यों की का संकलन कर सके। पृथु महाराज ये भगवान के प्रबंधन मैनेजमेंट के पहलू को, एस्पेक्ट का एक शक्ति विशेष अवतार है। तो ऐसा नहीं कि वो पूर्ण भूषण भगवान को पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नहीं, उनके मैनेजमेंट को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पृथु महाराज, उनके साहित्यिक रचना के को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वेद व्यास जी। तो इसी ढंग से किसी भी जीव के माध्यम से भगवान अपने ज्ञान का प्रचार करवा सकते हैं, किसी भी जीव के माध्यम से। बिना भगवान के आवेश के कोई भी व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता, बिना कृष्ण शक्ति के कोई प्रचार नहीं कर सकता। तो कृष्ण शक्ति के बिना कैसे प्रचार हो सकता है? तो हम किसी भक्तों को देखें तो भक्तों के अंदर भगवान के गुणों को देखने की कला विकसित करें, कि सब भगवान के गुण है जिसके माध्यम से ये हमारे तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं। तो इस ढंग से हम गुरु को साक्षात हरि के रूप में देख सकते हैं, अन्यथा हम चाहेंगे कि नित्य सिद्ध व्यक्ति हो तभी साक्षात हरि मानेंगे, तो ये हमारा बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है। क्लियर है यहां तक बात? अब इतना होने के बाद हम देखते हैं कि जिस दिन में गुरु को इस माध्यम से देखा है या पत्नी ने पति की इस ढंग से सेवा की है उसको क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं। शास्त्रों में बहुत से उदाहरण है, भागवतम के तीसरे स्कंध में कर्दम मुनि और देवहूति माता की कथा आती है। माता देवहूति स्वयंभू मनु की पुत्री है और वो इतनी सुंदर थी कि जब अपने पिता के महल के छत के ऊपर खेलती थी तो गंधर्व लोग आकर्षित हो जाते थे। स्वयं मनु की पुत्री, और स्वयंभू मनु आए थे जंगल में उस पुत्री के लिए, अपनी पुत्री के लिए सही वर ढूंढने के लिए, तो कर्दम मुनि जी को उन्होंने पाया और कर्दम मुनि जी तपस्या कर करके उनके शरीर से दिव्य कांति निकल रही थी, लेकिन बहुत दुबले पतले हो गए थे, लेकिन फिर भी शरीर बहुत दिव्य कांति निकल रही थी। तो स्वयं मनु ने, जो कि इस मनु की पुत्री है और ये क्योंकि वन में रहने वाले एक ब्रह्मचारी के साथ, उन्हें बोला कि आप मेरी पुत्री को ग्रहण कीजिए। तो कर्दम मुनि ने उनको स्वीकार किया और देवती माता ने जंगल में रहते हुए बहुत ही सादगी का जीवन जिया और उन्होंने कर्दम मुनि की बड़ी हृदय से सेवा की। और जब सेवा उन्होंने की उसके बाद कर्दम मुनि उनको क्या बोलते हैं, कर्दम मुनि ने कहा, मैंने तप ध्यान तथा कृष्ण भक्ति का धार्मिक जीवन बिताते हुए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है। यद्यपि तुम्हें भय तथा शोक से रहित इन उपलब्धियों का अभी तक अनुभव नहीं है, किंतु इन सबों को मैं तुम्हें प्रदान करूंगा क्योंकि तुम मेरी सेवा में लगी हुई हो। कर्दम मुनि ने कहा, मैंने जितनी तपस्या की है, जो मेरे साक्षात्कार हैं, अनुभूतियां हैं, आपको उसका अनुभव नहीं है, लेकिन तुमने मेरी सेवा की है, मैं सबका सब तुमको प्रदान करता हूं। तो श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये तरीका है कि अगर पति पूर्ण रूप से भक्त है और पत्नी केवल उसकी सेवा कर रही है, तो जो पति ने भक्ति में जो साक्षात्कार प्राप्त किए हैं वो सारा का सारा पत्नी को ट्रांसफर हो जाएगा। इसी ढंग से गुरु बहुत ही उच्च अवस्था में है, शिष्य इतनी उच्च अवस्था में नहीं है, लेकिन शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है तो गुरु सबका सब जो साक्षात्कार है, जो अनुभूतियां, उसको स्थानांतरित करते हैं केवल सेवा करने मात्र से। तो यह है सरेंडर, शरणागत। इसी ढंग से देखते हैं मध्वाचार्य जी थे। मध्वाचार्य जी जब टीकाएं देते थे, प्रवचन देते थे, तो बहुत ही हाई क्लास संस्कृत में देते थे और कई बड़े बड़े ब्राह्मण उनको सुनते थे, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण। और जब एक बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण उनको सुनते थे तो एक बार कोई ब्राह्मण उनके पास आए, मध्वाचार्य जी के पास, बोले कि आपके इस सूत्रों के ऊपर टीका कौन लिखेगा। तो उन्होंने सोचा कि मध्वाचार्य जी उन्हीं को बोलेंगे, तो बड़े अहंकार में उन्होंने पूछा। तो मध्वाचार्य जी ने अहंकार का दमन करने के लिए बोला, आप में से कोई नहीं टीका लिखेगा। तो बोले कौन लिखेंगे, बोले मेरा बैल लिखेगा। अरे वो इतने बड़े बड़े विद्वान संस्कृत के पंडित और एक बैल, बोले बैल लिखेगा। वो जो बैल था ये पूरा का पूरा लाइब्रेरी था उनका, मध्वाचार्य जी के सारी पुस्तकों को ढो के लाता था। तो बैल के अंदर बड़े विशेष गुण थे, बैल साधारणतः दो कार्य करता है, या तो काम करता रहेगा या फिर वो चुगाली करता था। लेकिन जब ये बैल मध्वाचार्य जी प्रवचन देते थे, ये बैल चुपचाप बैठ जाता था, काम भी नहीं करता था और चुगाली करना बंद कर देता था और बड़े ध्यान पूर्वक सुनता था, है ना। मध्वाचार्य जी नोट करते थे चुगाली करना बंद, है ना। तो हम लोग भी जब श्रवण कर रहे होते हैं तो मानसिक रूप से हम चुगाली कर रहे होते हैं, हमारा मेंटल चिंगम चल रहा होता है, अभी चिंगम खा रहे थे, ये करना है वो करना है ना। वो बैल ने बिल्कुल चुवाली बंद और ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। तो मालूम है ये बैल अगले जीवन में बनते हैं जयतीर्थ, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी और बहुत बड़े विद्वान बने थे। ये शक्ति है एम्पावरमेंट की, ये शक्ति है। उसके बाद हम देखते हैं नारद मुनि जी जब दासी पुत्र थे, उनके घर में भक्ति वेदांत आए और उन्होंने सेवा की, कुछ नहीं पता था, बस उनका प्रसाद स्वीकार किया, उनकी सेवा की और वह जाके कितनी विरक्ति जागृत हो गई उनके अंदर। जब उनकी माता का निधन हुआ तो 5 साल के बालक थे, उनको दुख नहीं हुआ, बोला ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, और भगवान की खोज में निकल गए और भगवान ने उनको दर्शन भी दिए और फिर उन्होंने खूब तपस्या की और अगले जन्म में वो क्या बने, स्वयं नारद मुनि बने। तो ये प्रोसेस इस ढंग से कार्य करता है कि हम जितना जो हमारे वरिष्ठ भक्त हैं या गुरुजन हैं उनको हम उनके अंदर भगवान के गुणों को देखेंगे, उनका गुणगान करेंगे, तो निश्चित रूप से तब ये ज्ञान स्थानांतरित होता है। तो अब हम लोग जैसे पहले बताया कि एज ए लीडर भी हम यहां पे सेवा कर रहे हैं और एज ए फॉलोअर भी है, हर कोई यहां पे फॉलोअर भी है और लीडर भी है। तो अगर हम एज ए लीडर है तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है ताकि ये सिस्टम कार्य करता रहे। हम ये नहीं कह सकते अपने फॉलोअर से भैया मेरे को साक्षात हरि मानो, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा तुम्हें, तुम्हारा कोई ना गति कुतोपी। अगर मुझे भगवान के रूप में नहीं देखा आपने, साफ साफ श्लोक मध्वाचार्य जी कह गए, अगर आपने नहीं देखा मेरे को, मैं तुम्हारा लीडर हूं और मुझे साक्षात हरि के रूप में ना देखा तो ना गति कुतोपी। यस्य प्रसाद और भगवत प्रसाद, मैं खुश तो भगवान खुश और मैं ना खुश तो भगवान ना खुश, कहीं के नहीं रहोगे तुम। ये गलत है, ऐसे नहीं, ऐसे हम रिस्पेक्ट हमें डिमांड नहीं करनी, हमें रिस्पेक्ट कमांड करनी है। तो रिस्पेक्ट कमांड करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि मेरे किन अवगुणों के कारण इस भक्त की श्रद्धा टूटी। ऐसा नहीं है कि मैं ठीक है ना, कुछ तो गुण है ना प्रभु, मैं कुछ तो कर लेता हूं ना, तो इन्हीं गुणों को देखो भाई, भगवान मेरे देखो एक भगवान के गुण है, बाकी मेरे गुणों को छोड़ दो। नहीं, हमें उन अवगुणों पर कार्य करना पड़ेगा जिसके कारण जो हमारे से भक्त हमसे जुड़े थे उनकी श्रद्धा कमजोर हो रही है। ये मेहनत हमें साथ साथ करती रहनी चाहिए ताकि उसकी श्रद्धा और बढ़े। हमें संघर्ष करता रहना पड़ेगा अपने अनर्थों के साथ, ये हमें आराम से रिलैक्स नहीं करना कि सबको साक्षात हरि के रूप में देखना ही चाहिए। और दूसरा, जो भी हमारे अंदर शक्ति है, हो सकता है हम अच्छा प्रवचन दे सकते हो सकता है हम अच्छा कीर्तन कर सकते हो सकता है हम अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हो, ये जितने भी गुण है ये मेरी शक्ति नहीं है, भगवान अपने आवेश का संचार कर रहे हैं, मेरे अंदर कुछ भी योग्यता नहीं है। हम अक्षम हैं, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, हम क्या अगर हाई जंप भी मारेंगे तो कितनी जंप होगी, बाल के अग्र का 10,000वां हिस्सा, नथिंग। तो जितने भी गुण दिखाई दे रहे हैं मुझे अपने, जिसके ऊपर मुझे गर्व है, ये सब भगवान की कृपा से है। भगवान इन गुणों का संचार क्यों करते हैं, अपने मिशन को पूरा कराने के लिए। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बड़े बड़े दिग्गजों को हरा दिया, क्योंकि भगवान की इच्छा थी, भगवान ने अपने मिशन को पूरा कराना था। यही अर्जुन जब भगवान के अप्रकट होने के बाद भगवान की रानियों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सका और साधारण वनवासियों से आदिवासियों से हार गया, गांडी धनुष के पास था फिर भी वो हार गया, अर्जुन बहुत विस्मित है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अब भगवान ने शक्ति वापस ले ली। हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी कर पा रहे हैं, ये भगवान की कृपा है, पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा है। तो ये जानने के बाद हमें बहुत कृतज्ञता बढ़ जानी चाहिए, अरे मुझको चुना है, मेरे में भगवान ने शक्ति का संचार किया, मेरे में तो कोई योग्यता भी नहीं, मैं पापी अपराधी व्यक्ति अधम, और मेरे द्वारा भगवान ये कार्य करवा रहे हैं, तो हमारी कृतज्ञता अपने पूर्ववर्ती आचार्यों और कृष्ण के प्रति बहुत बढ़ जानी चाहिए, हमारा प्रेम बढ़ना चाहिए कि मुझे क्यों चुना गया, मेरे में तो कोई योग्यता है नहीं। तो हमें इस दृष्टिकोण को विकसित करना चाहिए। इस ग्रेस जाननिवास प्रभु एक बार बता रहे थे एक लेक्चर में, कि एक साधक को हमेशा विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि साधक कृष्ण को नहीं जानता, और एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो भी विनम्र होता है क्योंकि वो कृष्ण को जानता है। हम कृष्ण को नहीं जानते तभी हमें विनम्र रहना चाहिए, मैं तो जानता नहीं, और जब जान गए जाएंगे तो अपने आप ही विनम्र हो जाएंगे। तो हर अवस्था में ही हमें विनम्र रहना है, क्योंकि प्रारंभ की अवस्था में क्या होता है कि हम कुछ हमें सफलता मिलती है तो हमें गर्व हो जाता है कि मैंने ये कार्य किया। नहीं, निश्चित रूप से इससे हमें बहुत बच के रहना चाहिए। तो एज ए लीडर हमें इन क्षेत्रों में कार्य करना चाहिए। क्या क्या थे, पहला क्या बताया था? हाँ, जिन अवगुणों के कारण दूसरों की श्रद्धा कमजोर होती है उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए, और भगवान की शक्ति के रूप में देखना चाहिए, इसमें विनम्रता आनी चाहिए, कृतज्ञता आनी चाहिए, और देखना चाहिए कि भगवान ये शक्ति दे रहे हैं केवल अपने मिशन को पूरा कराने के लिए, इसका हम दुरुपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ना करें। एज ए फॉलोअर, जब हमें फॉलो करना है तो क्या करना है? एज ए फॉलोअर हमें देखना चाहिए कि हाँ, हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं इनके अंदर अवगुण भी हो सकते हैं और गुण भी हो सकते हैं, हमें एज इट इज उसको स्वीकार करना है। यस, ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, और यही लंबे समय तक हमें साथ में रखेगा। उनके अंदर कुछ कमियां भी हैं और कुछ अच्छे गुण भी हैं निश्चित रूप से, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, जो गुण है उनका गुणगान करना चाहिए कि हाँ, ये भगवान की कृपा दिखाता है इनके माध्यम से, और अवगुणों की हमें अनावश्यक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। साधु निंदा से बचना चाहिए। इसका मतलब यह भी है कि ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करने, हमें लगे कि उनके आदेश जो बिल्कुल है शास्त्रों के विपरीत जा रहे हैं, नहीं नहीं ये तो कृपा है, तो विवेक बुद्धि हमें ऑन रखनी चाहिए, विवेक बुद्धि का सहारा लेना चाहिए, लेकिन अनावश्यक हमें साधु निंदा नहीं करने, और निश्चित रूप से उनसे द्वेष नहीं। कई बार हमें लगता कि अब तो इनमें हमने कोई अंतर नहीं रह गया, या कई क्षेत्रों में तो मैं इनसे आगे निकल गया हूं, तो फिर इस ढंग से कंपटीशन की भावना या द्वेष की भावना से बचना चाहिए। ये बद जीवन के अंदर स्वाभाविक हो जाता है द्वेष करना, तो द्वेष से हमें बचना चाहिए। तो इस ढंग से हम देखेंगे कि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, सभी शास्त्रों में ये बताया गया है, यही एकमात्र तरीका है शक्ति प्राप्त करने का, कृपा प्राप्त करने का। हम बद अवस्था में हैं, भगवान मुक्त अवस्था में है। गुरु को ट्रांसपेरेंट मीडिया बताया गया है, पारदर्शक माध्यम बताया गया है। गुरु नित्य सिद्ध भी हो सकते हैं, नित्य बद भी हो सकते हैं। गुरु साधना सिद्ध भी हो सकते हैं, नित्य सिद्ध भी हो सकते हैं। तो अगर इस संसार में हमें, और जब फिर गुरु भी कभी डायरेक्ट हमारे साथ कॉन्टेक्ट तो रहता नहीं, गुरु के प्रतिनिधियों के साथ कॉन्टेक्ट रहता है, और जो गुरु के प्रतिनिधि भी होंगे वो भी हो सकते हैं बद अवस्था में हो। तो इस सारी परिस्थितियों को समझते हुए इस प्रिंसिपल को हम कैसे अपने जीवन में लागू करें, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर इस प्रिंसिपल को सही ढंग से नहीं समझते हैं तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में उथल पुथल मची रहेगी। तो ये हम आपको समझाने का प्रयास किया। हरे कृष्णा। किसी कोई टिप्पणी या प्रश्न? हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। बस एक चीज पे मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए थी कि जैसे बताया कि भक्तों के अंदर हमें भगवान के गुणों को देखना चाहिए, सीखने का प्रयास करना चाहिए, तो इसको कैसे करना?
भगवान के गुणों का जैसे बताया कि भगवान का मुख्य मिशन रहता है बद जीवों का उद्धार करना, उनको सही ज्ञान देके, और हमें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है डायरेक्टली भगवान से तो प्राप्त नहीं हुआ, भक्तों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। तो ये भक्तों के अंदर भगवान ने शक्ति का संचार किया जिसके कारण वो हमें प्रचार कर पा रहे हैं, तो ये भगवान के गुण है।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, शुरू में जब आपने जैसे बताया कि हमें हमारे जो गुरु हैं, जो सीनियर्स हैं, उन्होंने उनकी जब तक उनके ओपिनियन हमारे ओपिनियन से मैच करते हैं तब तक तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जब उनके कोई ओपिनियन हमारे ओपिनियन से मैच नहीं करते तब कहीं ना कहीं हमें हमारी श्रद्धा पे ठेस पहुंचती है। तो आई मीन फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे प्रभुपाद जी ने भी काफ़ी सारी टिप्पणियाँ लिखी है भागवतम पे, भगवद गीता पे और अन्य बुक्स पे। जब हम उन बुक्स को पढ़ते हैं कहीं कहीं जब हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैच नहीं करता, तो हमें कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा टूटने लगती है। तो ऐसे सिचुएशन को कैसे अवॉइड किया जाए?
हाँ, अच्छा प्रश्न है। जब शास्त्र में कोई बात पढ़ते हैं और वो हमारे ओपिनियन से मैच नहीं कर रहा तो हमें क्या ऐसे समझना चाहिए? निश्चित रूप से हमारा जो ओपिनियन है, हमारे अंदर चार दोष हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन जो भगवान के प्रतिनिधि लिख रहे हैं, शास्त्रों में लिख रहे हैं, वो शास्त्रों की बातें, भगवान का ओपिनियन है, प्रभुपाद अपना ओपिनियन नहीं दे रहे। तो ये उस समय हमें अपने आप को ओपिनियन को करेक्ट करना चाहिए। प्रभुपाद के समय काफी हवा उड़ी कि मनुष्य चांद पे गया है, प्रभुपाद ने साफ खंडन किया। तो कहीं उनके प्रभुपाद के शिष्य छोड़ के चले गए, बोले बूढ़ा व्यक्ति है, इसको क्या मालूम साइंटिस्ट क्या होते हैं, छोड़ के चले गए। प्रभुपाद की बात को माना ही नहीं उन्होंने, और अब नासा बोल रहे हाँ हो सकता है मून पे ना गए, है ना। सो वो विजन जो है, क्योंकि जो प्रभुपाद ने अपने टिप्पणी लिखी है वो कि अपना मत नहीं दिया, वो भगवान का मत है, तो अपने मत को हमें भगवान के मत के अनुसार बदल देना चाहिए।
और प्रभु जी एक और चीज है, हम प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा देखते हैं कि ऐसे बोला जाता है हमारे घरों में भी, या हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि हस्बैंड जो भी अच्छे काम करता है, जो भी अच्छी डीड्स करता है, उसका हाफ ऑफ द एडवांटेज वाइफ को ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो ये कहाँ तक सही है?
नहीं मिल जाता है, डेफिनेटली मिलता है। हस्बैंड को भी एक आदर्श भक्त होना चाहिए और पत्नी को उसकी आदर्श सेविका होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से दोनों भगवत धाम जाएंगे। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन तो ये है, आइडियल हस्बैंड एंड आइडियल वाइफ, इसके लिए प्रयास करते रहे।
हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा व्याख्यान आपने दिया प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि जो भगवान है उनका एक ही मिशन है कि वो बद्ध जीव को अपने पास तक लाना, और वो भक्तों के माध्यम से और व्यक्तियों के माध्यम से, मतलब मैं भक्त नहीं कह रहा व्यक्ति कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो ज्यादातर जो देखा जा रहा है कि भगवान की ही जो शक्तियां हैं वो व्यक्ति में संचारित हैं और उन्हीं शक्तियों से वो लोगों को आकर्षित करते हैं। तो ज्यादातर लोगों को जो आज जो पथभ्रष्ट हो गए हैं और उनको जो छला जा रहा है, तो उसके पीछे मतलब भगवान किस तरह से फिर इस योजना कैसे समझने की कोशिश करें?
हाँ, कि लोग धोखा क्यों खा रहे हैं, है ना। प्रभुपाद कहते हैं द चीटर गेट्स चीटेड, है ना।
भगवान की शक्ति के से ही
शक्ति है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में विराजमान है। अगर कोई सिंसियर सीकर है, बहुत ही सिंसियरली भगवान की खोज में है, तो उसको वैसे ही गुरु मिलेंगे। जैसे जिसकी इच्छा जितनी शुद्ध है भगवान को जानने की, उसी अनुपात में उसी प्रपोर्शन में उसको गुरु मिलेंगे। बहुत ही सूक्ष्म,
इसका अर्थ यह हुआ कि उस जनता को हम भोली भाली जनता नहीं कह सकते
ना। वो चीपली जाते हैं, प्रोसेस चीपली जाते हैं, चीप मिलेगा।
हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि हमारे को भक्तों के अंदर गुणों को देखना चाहिए, हम गुणों को देखने का मान लीजिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे को अवगुण नजर आ रहे हैं बार बार, तो उस केस में क्या करना चाहिए हमारे को?
हाँ, अपने मन को थप्पड़ मारना चाहिए, मन की पिटाई करनी चाहिए अपने, क्योंकि आप दूसरे में अवगुण देख रहे हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, बहुत अहंकार है हमारा, अब इतनी हमारी होगी हिम्मत होगी कि दूसरे में अवगुण भी देखना शुरू कर दिया। देखो अवगुण कई बारी दूसरे भक्तों में होंगे, वो कई बारी बिल्कुल प्रदर्शित होते हैं, ठीक है, लेकिन उसका हमें उसकी निंदा नहीं करनी, उससे परेशान नहीं होना, और देख रहे हैं कि जो गुण है उसके अनुसार चलने का प्रयास करना है। और कई बार उसके अवगुण उसके गुणों को इतना आच्छादित कर रहे हैं कि आपके लिए सेवा करना ही संभव नहीं हो रहा, तो फिर हमें आगे ऊपर जाके इसका फिर आगे इसकी समाधान ढूंढना चाहिए। लेकिन अनावश्यक रूप से भक्त के अंदर गुण भी होंगे और अवगुण भी होंगे, अवगुणों को ही ढूंढते रहे बस, तो वो दिक्कत की बात है।
ऐसे चीपली या मतलब जो चीटर है, चीटेड होते हैं, तो इस उसमें हमारे अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा, फिर इसको भगवान कैसे स्वीकार करेंगे?
नहीं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सीधी सीधी बात है, इसको साथ में हम इसमें अपनी जिम्मेवारी भी नहीं छोड़ सकते, हमें जहाँ से जहाँ प्रचार करना चाहिए वहां तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन हम सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है, सुप्रीम कंट्रोलर तो है नहीं, जहाँ से हम प्रयास करेंगे जहाँ से लोगों तक पहुँचने के लिए, लेकिन जो व्यक्ति स्वीकार करेगा तो अच्छी बात, जो नहीं करेगा तो क्या करेगा। और कई लोग हमें रिजेक्ट करके जाते हैं ऐसे चीफ गुरु के पास, तो क्या कर सकते हैं।
तो उस पर दृष्टिकोण क्या रहना चाहिए उनके बच्चे?
दृष्टिकोण है कि अभी इनका सौभाग्य इतना उदय नहीं हुआ,
तो इसी दृष्टिकोण में प्रभु जी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो
सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें, हमारा कोई वो नहीं था, इस हमारे ऊपर कृपा हुई भगवान की कि हम इसको कर सके। अभी इनके ऊपर कृपा नहीं हो रही भगवान के, भक्तों की कृपा होगी तो ये भी जुड़ेंगे। ऐसा नहीं कि मैं इनसे सुपीरियर हूं, मुझ पर कृपा हो गई इसलिए मैं इसमें जुड़ा हूं, मेरी कोई योग्यता नहीं है। इन पर जब कृपा होगी ये भी जुड़ेंगे। हम इनको अवसर प्रदान कर रहे हैं, अगर इसको स्वीकार कर ले तो ठीक है, नहीं कर पा रहे इसका मतलब अब इनका सौभाग्य इतना उदय नहीं हुआ, इतनी सुकृति इनके अंदर इकट्ठी नहीं हुई। ठीक है, हाँ लास्ट क्वेश्चन।
जो मुझे मतलब मैं जस्ट चेक कराना चाहता हूँ अंडरस्टैंडिंग ठीक है, जो साक्षात हरित्वेना है, अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे में भगवान की प्रेजेंस को देख रहा है कि भगवान इसके थ्रू एक्ट कर रहे हैं, और जिस व्यक्ति की जितनी प्रगति होगी उतने लेवल पे वो इस प्रिंसिपल को देख पाएगा।
एग्जैक्टली
और इसकी जो शुरुआत है कि एटलीस्ट गुरु से हम स्टार्टिंग करें।
हाँ जी, इसकी शुरुआत ऐसे ही है कि गुरु से शुरू करें। जब गुरु को हम साक्षात हरि के रूप में देखना शुरू करेंगे तो गुरु के गुरु भाइयों को भी हम देखना शुरू करेंगे, उनके अंदर भगवान की प्रेजेंस देखेंगे, फिर अपने गॉड ब्रदर्स के अंदर भी देखेंगे, फिर कण कण में देखना शुरू करेंगे।
इसी में प्रभु जी अगर कोई परफेक्शन की स्टेज पे है तो वो अपने गुरु को और एक साधारण व्यक्ति को इसमें मतलब कोई डिस्टिंक्शन नहीं करेगा, एक जो उनके गुरु हैं जो अगर कोई परफेक्शन की स्टेज पे उन सबको समान दृष्टि से ही देखेगा।
अगर समझ लीजिए कोई परफेक्शन की स्टेज में आप कह रहे हैं गुरु को स्पेशल स्टेटस नहीं देगा और अपने साथ के भक्त भी भगवान को देखेगा,
दोनों को स्पेशल स्टेटस देगा, इक्वल लेवल पे देखेगा मतलब
नहीं। देखिए उसमें भक्ति में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, एक प्रिंसिपल है कि सबके अंदर वो परमात्मा को देखते हैं और सबके हरेक का उसके जीवन में एक व्यक्तिगत कंट्रीब्यूशन उसको भी देख रहा है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, हर एक के विविधता भी है और एकता भी है। तो एकता क्या है कि सबने भगवान को देखना, और विविधता क्या है कि हर एक के साथ उनके अलग अलग संबंध है, किस मात्रा में किसका कितना भक्ति में आगे बढ़ाने में किसका सहयोग रहा है, योगदान रहा है, तो उसके अनुसार सब होगा, है ना। ये तो फिर मायावादी कंसेप्ट हो गया, सब एक है, वैरायटी नहीं है। वैरायटी तो है ही है, वैरायटी लालच जीते। ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की। गॉड प्रेमानंद।